بھروسہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بر بنائے استحقاق مت مانگو کہ میرا حق بنتا ہے، میں نے یہ کیا ہے آپ مجھے دیجئے، میں نے نماز پڑھی ہے آپ میرے رزق میں برکت دیجئے، میری تو نماز بھی اس قابل ہے ہم کہ ہماری نماز اس پر بھی پکڑ ہو جائے، دل حاضر تھا، تجوید درست تھی، خیال صحیح تھا اور سارے ادائیں سنت کے مطابق تھیں، تو بعض ہماری طاعت بھی پکڑ کے قابل ہے، تو ہم کس برتے پر یہ مانیں یہ کہ ہم آپ سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، حق تو بنتا ہی نہیں ہے، بس یہ کہو کہ میرا حق نہیں بنتا، ہماری عبادت آپ کی عظمت غیر محدود کے سامنے کچھ نہیں، لہذا آپ اپنی مہربانی محض اپنی مہربانی سے کر دیجئے، آپ اپنی مہربانی اپنی مہربانی سے کر دی، اپنے فضل سے اپنا فضل فرما دیجئے۔ یہ دعا ورحمنا اس کی تفصیل کو سامنے رکھ کر ہم آپ کی رحمت سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ رحم جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں یہ بر بنائے استحقاق نہیں ہے، ہم تو مستحق عذاب ہیں، ہمارا استحقاق تو عذاب کا ہے اور وہ بھی ایک دو طرح کا نہیں، کئی طرح کے عذاب کے ہم مستحق ہیں، لیکن معافی اور مغفرت کے بعد طرح طرح کے مستحق عذاب پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارشیں فرما دیجیے۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، یہ مضمون اب ختم ہو گیا اور آج بہت خاص تقاضے کی بنا پر یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی اپنا استحقاق پیش نہ کرو کہ میرا حق بنتا ہے، میں ضابطے سے مانگ رہا ہوں، بلکہ رابطے سے مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، شاعر کہتا ہے، اللہ والے کہتے ہیں، گڑ گڑا کر جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو میں گل فام، اچھی والی شراب دیتا ہے جو گڑ گڑا کے مانگتا ہے، آزاری سے، عاجزی سے، انکساری سے، ناز و نخرے کرے جو میں آج شام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام، پھر اس پر نعمتیں بھی نہیں ہوتی اور اس سے خوش بھی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جہاں تواب کے ساتھ رحیم نازل فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگوں، ہم جو تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں تو ضابطے سے نہیں کرتے، شان رحمت کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں، ضابطے سے نہیں کرتے، شان رحمت کی وجہ سے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، جس کا باطل عقیدہ یہ ہے کہ معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو قانوناً معاف کرنا پڑے گا، تو علامہ علوسی یہ گمراہانہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہے، ہاں اللہ کا رحم ایسا ہے کہ وہ معافی مانگتے ساتھ ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کو معاف کرنا پڑے گا یہ بندے کی بندگی سے کتنی غلط بات ہے، کیسی بات، یہ فرقہ معتزلہ والے ایسی تھے اور آج کوئی ان کا چاہنے والا ماننے والا کوئی اس قسم کا آدمی موجود نہیں ہے الحمدللہ۔ تو یہ جتنے ایسے فرقے باطل فرقے تھے سب دم توڑ گئے اور دنیا سے چلے گئے، اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ موجود رکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ قانوناً معاف کرنا پڑے گا، یہ باطل عقیدہ ہے، تو علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ تواب کے بعد رحیم نازل فرمانا فرقہ معتزلہ کا رد ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ نہیں، وہ قادر مطلق ہیں، کسی کو معاف کرنے پر وہ مجبور نہیں ہیں، کسی کو معاف کرنے کی وجہ پر وہ مجبور نہیں ہیں، اپنی شان کرم سے، شان رحمت سے معاف فرماتے ہیں، لہذا بندوں کا کام ہے عاجزی سے ان کے حضور میں گڑ گڑاتے رہیں، دین پر استقامت چاہتے ہو تو عاجزی اور شکستگی اختیار کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ سارے عالم سے مستغنی ہیں، واللہ غنی علی العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے مستغنی ہے، کسی کی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ آدمی روتا گڑ گڑاتا رہے۔ اللہ والوں کو ہم نے یہی دیکھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو، اعمال صالحہ کرتے رہو، گناہ کر کے ڈرنا تو عجیب بات نہیں ہے، اعمال صالحہ کر کے بھی ڈرتے ہیں، صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب یہ لوگ رات کو اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں تو اس کے بعد الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر ایک تو بہت ہی عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، لیکن عاجزی انکساری کا مطلب بیماروں کی طرح نہیں، عاجزی انکساری سے چلتے ہیں، سینہ تان کے بھرم بازوں کی طرح نہیں چلتے، عاجزی انکساری، دوسروں کو سلام میں پہل کرتے ہیں، عاجزی انکساری یہ ہے، لہذا یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون कभी कोई इनको छेड़छाड़ करता हो, हो मुल्ला हो गए, तो ये पलट के जो है ऑल फॉल नहीं कहते, बल्कि यूं कहते हैं दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे भी मुल्ला बना दे, वाकई अल्लाह वाला बना दे, मैं ये रास्ता तो चल रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कबूल फरमा ले। उस मौके पे शेर कहता है शायर कि तुझे खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो और दीन पर चलने वालों का मजाक उड़ा रहा है, लिहाजा अल्लाह ताला तुम्हें भी अपनी मोहब्बत से आशना कर दे, वो क्या आज तुम मजाक उड़ा रहे हो, कल को तुम भी अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में चलने लगो। तो बजाय कोई लड़ाई झगड़ा करने के काम की बात उससे कहते हो कौलू सलामा वैदा वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और उनकी रातें गुजरती हैं सजदे और क़याम में, वल्लदीना यबीतूना बात यबीतू कहते हैं रात गुजारने को, उनकी रातें गुजरती हैं सजदे और क़याम में, ढाई ढाई तीन तीन घंटे ये हज़रात तहज्जुद पढ़ते थे, हम अगर पढ़ते भी हैं तो छः रकत आठ रकत में 20-25 मिनट आधा घंटे में आदमी थक जाता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम साहब इकराम नबी अलैहिस्सलाम तो एक एक रकत में एक पूरी रकत में सूरह बकरा पढ़ गए, एक रकत में सूरह बकरा, जरा खोल के देखें कुरान में पता चलेगा, पूरे दिन में एक आम आदमी का पढ़ना मुश्किल काम है। आप अलैहिस्सलाम एक रकत में सूरह बकरा और फिर सूरह आले इमरान, तकरीबन हजरत शेख ने लिखा है 6.25 पारे चार रकत में नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़े, ऐसे ही तो नहीं पैरों पे वर्म आ जाता। और वो हस्ती है जो बख्शी बख्शाई है, जिस पर कोई गुनाह नहीं है, अम्मा आयशा ने कहा भी रज़ी अल्लाह अन्हा कि आप तो बख्शे बख्शाए हैं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। फरमाया अफला अकूनु अबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार बंदा न बनूं, अल्लाह ने इतनी नेमतें की हैं, सारे जहान का सरदार बना दिया और सारे जहान का सरदार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, फिर कौन है जो कहे कि मेरा हक बनता है। तो आपकी नमाजें ऐसी, सहाबा की नमाजें ऐसी होती, एक 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 रात में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला कुरान खत्म कर लेते, एक एक रात में कुरान खत्म कर लेते। तो इस तरह हम ये हमसे तो थोड़ा सा हो जाए ये भी बड़ी बात है कि चलो भी रात को सोने से पहले ही 4-6 रकत तहज्जुद की पढ़ लें, तो हम चंद थोड़ी सी तहज्जुद पढ़ के हम अपने आप को मुस्तहिक समझने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये लोग वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी रातें गुजरती हैं सजदे और क़याम में, फिर उसके बाद क्या कहते हैं रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, या अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लीजिए, हमें बहुत डर लगता है। कोई गुनाह, जमाने में मोबाइल था ना, महरम औरतें पे मेकअप करना ही नहीं जानती थी, अगर कोई निकलती भी तो उसकी तरफ मेलान नहीं होता, क्योंकि खाना पीना जो आप जाके देखें सहाबा की औरतें ऐसे जैसे आज छाछरों में और उससे आगे थर पार कर जाके देखें वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ की औरतें कैसी होती, उनको क्योंकि मुरगन गजा नहीं मिलती, उनके चेहरों पर रौनकें नहीं होती, लिहाजा ऐसे तैसे थे। उस जमाने में गुनाह के कोई खास मौके भी नहीं थे, लिहाजा और गुनाह करते भी नहीं थे, लिहाजा उसके बावजूद क्या कह रहे हैं कि हमें अल्लाह दोज़ख की आग से बचा लीजिए। रात को जाग रहे हैं, ये फजर छोड़ने का तो तसव्वुर ही ना, हमारे यहाँ तो नमाजी लोग भी फजर नहीं पढ़ते, बहुत सब रात को जागते थे, आधी रात में सब उठ जाते थे, कोई बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहा है, कोई पस्त आवाज से पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई जिक्र कर रहा है। एक सहाबी को देखा कि अब्दुल्ला ज़िल मुजाहिदैन बाहर बैठे हुए जोर से जिक्र कर रहे हैं, हज़रत उमर ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा क्या ये आदमी रियाकार तो नहीं इतनी जोर से जिक्र कर रहा है, फरमाया रियाकार नहीं, ये साहिब हाल है, इसको बर्दाश्त नहीं कि आहिस्ता जिक्र करे, इसको बर्दाश्त नहीं कि आहिस्ता जिक्र करे। हज़रत बिलाल बुलंद आवाज से अहद अहद कहते थे, मुशरिकीन के दिलों पे जाके वो बमबारी की तरह गिरता था, एक अल्लाह अहद अहद। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा भाई तुम आहिस्ता कह लिया करो ना, तो ये तुम्हें मारते हैं पीटते हैं, हमसे देखा नहीं जाता, या ठीक है मैं कोशिश करूंगा। फिर दूसरे दिन जाते हुए देखा कि फिर जोर से कह रहे हैं, फिर वो मार रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु फिर कहा क्या हम मैं भूल जाता हूँ क्या करूँ, वो जात जब उसके जलवे मेरे सामने होते हैं तो मैं उसको देखता हूँ, गोया मैं कैसे आहिस्ता कहूँ, क्या हालात और क्या वाकयात इन हजरात के थे। सिद्दीक अकबर ने फिर उनको खरीद के आज़ाद किया और नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मैंने एक गोरी चमड़ी और काले दिल वाला गुलाम दिया, रूमी गुलाम उसके बदले में दिया, उस पर भी कुछ पैसा लिया उसने जालिम ने उमैया बिन खलफ ने जिसके वो गुलाम थे, और उसके बाद उनको खरीद लिया हजरत बिलाल को। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इतना बेहतरीन सौदा किया, इसमें कुछ मेरा भी हिस्सा मिला लेते। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल को आज़ाद किया, ये इन हजरात के हालात थे, काश कि हम इसको पढ़ें। और हम नहीं कहते कि हम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आदमी रश्क तो कर सकता है कि ये इबादत और ताआत और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी के किस मनसब पर फायज थे और हम किस मनसब पर हैं कि फराइज और वाजिबात भी हमारे सही नहीं होते और सारे मस्जिद तक दीन महदूद है। घर में गए, कोई मोबाइल में लग गया, कोई टीवी में लग गया, पूरे घर में दीन का कोई माहौल नहीं है। हमारी औरतें बेपर्दा फिर रही हैं, हमारे बच्चे बच्चियां गैर महरमों से पढ़ रहे हैं। तो दीन पूरा है हमारे अंदर से, नमाज की हद तक है, नमाज पूरा दीन नहीं है। नमाज एक अमल है, जैसे एक हाथ है दो हाथ, तो दो हाथ हो तो काफी है, अगर आंख ना हो तो चलेगा? जिस तरह जिस्म में तमाम चीजों की जरूरत है, आंख नाक कान हर चीज सलामत हो, एक उंगली भी कटी हुई है तो आज की जबान में इसको कहते हैं डिसएबल है ये आदमी, एब नॉर्मल है ये आदमी, थोड़ा सा मिजाज में ऐसा एब नॉर्मल है ये आदमी। तो जिसको और दीन अगर कितना ना अखलाकियात सही है, ना मुआशरत सही है, ना मुआमलात सही है, और सिर्फ नमाज से हम समझते हैं कि हम बहुत दीनदार आदमी हैं। अभी तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये नमाज तो पहला कदम है, अल्लाह की वलायत के तो अभी बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी हिम्मत और हौसला नसीब फरमाए और ऐसे लोगों से राबते की तौफीक दे कि जो इससे आगे बढ़ने की तरफ बुलाते हैं। हम ऐसी जगह बैठते ही नहीं, आते जाते नहीं, ये हमारे अंदर भी ऐसा ना आ जाए बस मियां नमाज पढ़ो सीधे घर जाओ। ये भी बहुत है इस दौर में, ये बहुत है। 30-40 हजार बहुत नहीं है? 30-40 हजार में भी दाल रोटी हो जाती है ना गुजारा, इसको बहुत नहीं कहते। कहते 1.5-2 लाख होना चाहिए ताकि आदमी सुरजानी से निकल के 11B में रहे और ताकि कुछ जो है कपड़े बना सके, गाड़ी ले सके, अच्छी जिंदगी। जिंदगी कब तक है? 2 लाख 5 लाख वालों की भी जिंदगी खत्म होने वाली है, लेकिन एक हमेशा की ना खत्म होने वाली जिंदगी की तरफ बुलाया जा रहा है कि उसकी तरफ हमें इतना आगे बढ़े। वस्सारियू इला मगफिरा, अल्लाह ताला बुला रहे हैं, फरमाने दौड़ो दौड़ो मेरी मगफिरत की तरफ। वस्सारियू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहस समावात वल अर्ध, दौड़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अल्लाह की जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अब बताइए हमारे उर्फ में आप देखिए जो चौड़ाई कितनी होती है कपड़े की, 1.5 गज है, 2 गज है, बात इतना बड़ा। उसकी लंबाई कितनी होती है? उससे बहुत ज्यादा होती है। इतना ही होगा 2 गज है तो 2 गज लंबाई होगी, कई गज होते, 21 गज बाद दफा कई चौड़े उसमें। तो जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है उसकी लंबाई कितनी होगी और कितनी बड़ी जन्नत अल्लाह ताला हमेशा के लिए देना चाहते हैं। और हम हैं कि दुनिया में ही लगे हैं कि बस ये दुनिया बस सही हो जाए, बस थोड़ी ये परेशानियां खत्म हो जाए ना फिर हम करेंगे। ये समझ लीजिए कि अल्लाह यही फरमाते हैं नफ्स शैतान और हमारे माहौल मुआशरा कभी ये नहीं कहेगा कि ये काम मत करो, ये कहेगा अभी मत करना, बाद में कर लेना, बाद में बहुत नेक बन जाएंगे, अभी तो थोड़ी जरे अय्याशी कर लो, मजे कर लो। इसी तरह करते करते हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि आदमी कब्र जाके जब चला जाता है, हाय आकाश सोचा तो हमने बहुत कुछ था। करने के काम करने से होते हैं, सोचने से नहीं होते। जो हिचकिचा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। करने के काम करने से करना शुरू कर दें। हम फिर वही बात कहता हूँ बार बार में कि ना रात भर नफलें पढ़नी, कोई बिल्कुल तहज्जुद ना पढ़े, कोई गुना नहीं, गुनाह से बचने की फिक्र करे, गुनाह पर सच्ची तौबा नदामत का इजहार करे, आइंदा गुनाह से बचने का इरादा करे, नमाजों को वक्त पे पढ़े, सुन्नतों का एहतमाम करे, अल्लाह का प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपना प्यारा बना दे।